Iran Radio Podcast।
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। ۱۹۴۸ میں فلسطینیوں نے اپنی مرضی سے اپنے وطن کو الوداع کہہ دیا تھا۔ دوستو، اسرائیل کے بارے میں 10 مِتھک پوڈ کاسٹ کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ ایران ریڈیو سے میں ہوں احمد عباس۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دعویٰ غلط ثابت کیا تھا کہ زیونی واد اور یہودیت دونوں ایک ہی ہیں۔ آج ہم ایک انیہ مِتھک کی، 1948 میں فلسطینیوں نے اپنی مرضی سے اپنے وطن کو الوداع کہہ دیا تھا، سمیکشا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ ایلن پیپے 10 مِتھس اباؤٹ اسرائیل کے لیکھک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی بنیاد ایک جھوٹی کہانی پر رکھی گئی ہے جسے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے گڑھا گیا ہے۔ پشچم کے نیتاؤں اور میڈیا نے اس جھوٹی کہانی کو ایک بڑے سچ کے روپ میں سویکار کر لیا ہے۔ ایسا ہی ایک مِتھک یہ ہے کہ فلسطینی خود ہی اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اسرائیل کسی بھی طرح سے ایک اپنیویشک راشٹر نہیں ہے۔ ایک جھوٹ کہ جس پر آج بھلے ہی دنیا کے کئی لوگوں کو سندے ہے، لیکن زیونی نیتا اس کی واستوکتا سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ایلن پیپے اسرائیلیوں کے اس جھوٹ سے پردہ اٹھانے کے لیے پھر سے پہلے مِتھک کا رخ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ فلسطین ایک خالی بھومی تھی۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں اس پر وستار سے چرچا کی تھی۔ پیپے کہتے ہیں کہ جب زیونیوں کا پہلا جتھا فلسطین پہنچا تو فلسطین ایک نرجن اور خالی بھومی نہیں تھی۔ فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی زیونی سنرکشک اس سچائی سے واقف تھے۔ جیسا کہ فلسطین پہنچنے والے پرتنیدھی منڈل نے اپنے سہیوگیوں کو بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا تھا، دلہن ایک خوبصورت مہیلا ہے لیکن اس نے پہلے ہی کسی دوسرے شخص سے شادی کی ہوئی ہے۔ پھر بھی جب پہلا دل فلسطین پہنچا تو وہ وہاں کے مول نواسیوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ ان کے درشٹی کون سے مول فلسطینیوں نے وہاں قبضہ کر لیا تھا اور وہ آکرمنکاری تھے۔ زیونی نیتاؤں نے یہودیوں سے کہا کہ فلسطین میں رہنے والے ستھانیہ لوگوں کو ودیشی مانا جاتا ہے، اس لحاظ سے فلسطین کی زمین پر ان کا کوئی ادھیکار نہیں۔ نہ صرف وہ مول نواسی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ایسی سمسیا ہیں جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کا اپنیویشیکرن، جس کا ادھارن اسرائیل ہے، پارمپرک اپنیویشواد سے تین طرح سے الگ تھا۔ پہلا یہ کہ سودیشیکرن کرنے والے اپنیویشک اپنے استتو کے لیے کیول شروعات میں اور استھائی روپ سے اپنیویشوادی سامراج پر نربھر رہتے ہیں۔ فلسطین اور دکشن افریقہ سمیت کئی معاملوں میں جہاں اپنیویشوادیوں نے اپنی ماتری بھومی چھنی، کچھ سمے بعد وہ اس شکتی سے الگ ہو جاتے ہیں جس نے ان کا سمرتھن کیا تھا، یعنی ماتری بھومی کو چننے والے لوگ اس سامراج سے الگ ہونے کی گھوشنا کر دیتے ہیں اور خود کو ایک نیا راشٹر گھوشت کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اس سامراج کے ورودھ مکتی سنگرام بھی چھیڑ دیتے ہیں جس نے ان کا سمرتھن کیا تھا، تاکہ وہ دوسرے راشٹر کی بھومی پر قبضہ کر سکیں اور وہاں بس سکیں۔ ادھارن کے لیے برٹین کے خلاف امریکی کرانتی کے دوران ایسا ہی ہوا۔ دوسرا انتر یہ ہے کہ سودیشی کرن اپنیویشواد کی پریرنا بھومی پر قبضہ کرنے और उस भूमि पर अपना एक राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा से आती है, जबकि पारंपरिक उपनिवेशवाद अपनी नई भौगोलिक संपत्ति में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाला होता है। इसका इरादा उस भूमि पर कब्जा करके उसके संसाधनों को लूटना होता था, न कि इसे अपना वतन बनाने का। दुनिया भर में ब्रिटिश और यूरोपीय उपनिवेशवाद के ऐसे कई उदाहरण हैं। तीसरा अंतर उपनिवेशवादियों के व्यवहार से संबंधित है। औपनिवेशिक परियोजनाओं के विपरीत कि जो किसी साम्राज्य या मातृभूमि की सेवा के लिए शुरू की जाती हैं, स्वदेशीकरण उपनिवेशवादी उन विस्थापित लोगों के एक समूह की तरह होते हैं जो न केवल घर बल्कि मातृभूमि की तलाश में होते हैं। लेकिन यहाँ असली समस्या ये होती है कि ये नया होमलैंड वास्तव में किसी अन्य का वतन होता है जो वहाँ के मूल निवासी थे। किसी भूमि को मातृभूमि के रूप में चुनने वाले समुदाय का तर्क होता है कि इस नई भूमि पर उसका मूल अधिकार है। अब वो इसे या तो दैवीय अधिकार बताते हैं या आध्यात्मिक अधिकार। फिलिस्तीन में ज़ायोनीवाद को छोड़कर किसी ने भी हजारों साल पहले वहाँ रहने का दावा नहीं किया। स्वदेशीकरण या पेट्रिशियन उपनिवेशवाद का अध्ययन करने वाले एक विद्वान का तर्क है कि पेट्रिशियन औपनिवेशिक परियोजनाएं दूसरे के बहिष्कार के तर्क से प्रेरित होती हैं। इसका मतलब यह है कि उपनिवेशवादियों ने मूल निवासियों को खत्म करने के लिए व्यवहारिक साधन के रूप में नैतिक औचित्य प्राप्त कर लिए हैं। इस शोधकर्ता का कहना है कि कभी कभी इस तर्क के लिए वास्तविक नरसंहार की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी इसके लिए जातीय सफाई की भी जरूरत होती है, जिसे नरसंहार के चरण से भी अधिक खतरनाक और गंभीर माना जाता है। ये फिर एक ऐसा दमनकारी सरकारी शासन स्थापित करना जो वहाँ के मूल निवासियों के लिए किसी भी अधिकार से इनकार करता है। एलन पेपे एक दूसरा तर्क देते हैं जो उसी उन्मूलन के तर्क से आया है, जिसे अमानवीयकरण तर्क कहा जाता है। वे स्वयं यूरोप में यातना और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। इससे पहले कि वो वैसी ही या उससे भी बदतर क्रूरता करें, उन्हें पहले पूरे मूल राष्ट्र या पूरे समाज को वहशी जानवर और अमानवीय दिखाने की जरूरत थी, ताकि उन पर होने वाले किसी भी अन्याय पर किसी को आपत्ति न हो। ज़ायोनी कट्टरपंथी फिलिस्तीनियों को उनके ही वतन में किसी तरह के विरोध का अधिकार देने को तैयार नहीं है। 1882 की शुरुआत से ही ज़ायोनियों ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया और उसे यहूदियों के प्रति नफरत का नाम दिया। यहूदियों के प्रति नफरत का प्रोपेगंडा करके फिलिस्तीनियों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया। लेकिन फिलिस्तीन पहुंचने वाले ज़ायोनियों ने पहले जो कुछ लिखा है उससे कुछ दूसरी ही कहानी निकलकर सामने आती है। इन लेखों से पता चलता है कि फिलिस्तीनियों ने फिलिस्तीन पहुंचने वाले ज़ायोनियों का बाहें खोलकर स्वागत किया और उन्हें अपने वतन में जगह दी। फिलिस्तीनियों ने किस तरह उन्हें अपने खेतों में खेती करना सिखाया। लेकिन जब इस हकीकत से पर्दा उठा कि ये लोग यहाँ के मूल निवासियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जीवन के लिए वहाँ नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें उनके वतन से निकालने और उनकी ज़मीनों और राष्ट्र पर कब्जा करने के लिए आए हैं, तो फिलिस्तीनियों ने रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया। रेजिस्टेंस शुरू हुआ तो इसने जल्द ही किसी भी अन्य उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष जैसा रूप ले लिया। बहरहाल, फिलिस्तीनियों की मेज़बानी और स्वागत का ज़ायोनियों ने मेहरबानी और विनम्रता से जवाब नहीं दिया। हालांकि फिलिस्तीनियों के पास उनसे प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं थी, इसके बावजूद ज़ायोनियों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कारोबार और बाजार से बाहर कर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि फिलिस्तीनियों के साथ काम करने वाले प्रवासियों के बहिष्कार की भी उन्होंने मांग कर दी। डेविड बिन गोरियन लगातार अरब श्रम शक्ति को एक बीमारी के रूप में संदर्भित करते रहे, जिसका एकमात्र विकल्प यहूदी श्रम शक्ति है। बिन गोरियन वही हैं जो फिलिस्तीन पर कब्जा करने वाले ज़ायोनियों के नेता बने और बाद में इसराइल के प्रधानमंत्री बने। अपने पत्रों में उन्होंने यहूदी श्रमिकों को एक स्वस्थ रक्त के रूप में चित्रित किया, जो यहूदी राष्ट्र को अवसाद और मृत्यु से मुक्ति प्रदान करेगा। फिलिस्तीनियों के अच्छे व्यवहार से शुरुआत में फिलिस्तीन पहुंचने वाले यहूदी भ्रमित हो गए थे। हालांकि उपनिवेशवाद का उद्देश्य मूल नागरिकों की उपेक्षा करना था, जबकि फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच सह अस्तित्व निर्विवाद था। ज़मीनी नेताओं को इस सहयोग और सह अस्तित्व को नष्ट करना था, लेकिन ऊपर से राजनीतिक समर्थन के बिना फिलिस्तीन में एक अलग वास्तविकता के लिए रास्ता खोलना संभव नहीं था। ज़मीनी आंदोलन जितना अधिक क्रूर और आक्रामक होता गया, उतना ही अधिक फिलिस्तीनी नेताओं को ज़मीनवाद की वास्तविकता का पता चलता गया। ज़मीनवाद की औपनिवेशिक योजना के बारे में फिलिस्तीनी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ग की समझ ने ज़मीनियों के मुकाबले में फिलिस्तीनियों के बीच आम राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय मूवमेंट को भरने में समय लगा। पैन अरब राष्ट्रवाद का पहला असर और पहली लहर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। इससे ये आशा जगी कि ओटोमन साम्राज्य के अरब हिस्से कुछ हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की तरह एक अरब ओटोमन साम्राज्य बन जाएंगे। पहली अरब राष्ट्रवादी लहर को कूनिया या अरब राष्ट्रवाद कहा गया और इसके अगले और स्थानीय संस्करण को वतनिया या राष्ट्रवाद कहा गया। फिलिस्तीनी बुद्धिजीवियों ने जो अरब एकता, स्वतंत्रता और अपने भाग्य के निर्धारण का अधिकार लेने की मांग कर रहे थे, इसमें प्रवेश किया और उन्होंने कई संगठनों और आंदोलनों की स्थापना की। कई फिलिस्तीनी बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने एक संयुक्त अरब गणराज्य का सपना देखा। उनमें से कुछ ग्रेटर सीरिया सिद्धांत की ओर आकर्षित थे, कुछ दूसरा विचार दमिश्क को एक नए देश का केंद्र बनाना चाहता था। फिलिस्तीन भी जिसका एक हिस्सा था। किसी भी तरह से फिलिस्तीनी, चाहे वो पैन अरब वाले हों, स्थानीय राष्ट्रवाद का विचार रखने वाले हों या ग्रेट सीरिया सिद्धांत से आकर्षित होने वाले, उनमें से कोई भी यहूदी राष्ट्र का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में अंग्रेज़ों के साथ वार्ता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे देश को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं जो वास्तव में उस समय तक फिलिस्तीन पलायन कर गए थे, लेकिन वे अधिक अप्रवासियों को स्वीकार नहीं करेंगे। फिलिस्तीनियों की एकता और सामूहिक आवाज़ 1919 में फिलिस्तीन राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यापकता से सुनाई दी। ये कॉन्फ्रेंस साल में एक बार आयोजित होती थी। फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासन को रोकने और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना करने से पहले अंग्रेज़ों ने दोनों समूहों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश की। फिलिस्तीनी नेता अपने राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध इस बात पर सहमत हुए कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद गठित होने वाले नए देश की संरचनाओं में यहूदी निवासी फिलिस्तीनियों के साथ समान रूप से भूमिका निभाएंगे। लेकिन इसके विपरीत ज़मीनी नेताओं ने इस विचार को तभी तक समर्थन दिया जब तक उन्हें लगा कि फिलिस्तीनी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। एक संयुक्त सरकार में भागीदारी और प्रतिनिधित्व ज़मीनवाद की भविष्य की नीतियों के बिल्कुल विपरीत था। इसीलिए ज़मीनी पक्ष की ओर से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद 1929 के दंगे भड़क उठे। हालांकि हिंसा की शुरुआत के दूसरे भी कारण थे। हिंसा की इस लहर में फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन के कानूनी स्वामित्व से वंचित करना शामिल था, वो भी प्रमुख स्थानीय लोगों और बड़े ज़मींदारों द्वारा जो स्वयं वहां नहीं रहते थे और उन्होंने अपनी ज़मीन यहूदी राष्ट्रीय कोष को बेच दी थी। किराएदार और मूल निवासी सदियों से यहां रह रहे थे, लेकिन उन्हें ये ज़मीनों से उजाड़ दिया गया, जिसके बाद उन्हें शहरों की झुग्गी झोपड़ियों और गंदी भीड़भाड़ वाली और ख़राब सड़कों पर आवारा होना पड़ा। 1930 के दशक की शुरुआत में एक ऐसी ही गरीब बस्ती में रहने वाले निर्वासित सीरियाई वक्ता इज़्ज़ुद्दीन कसाम ने अपने अनुयायियों से ब्रिटिश और ज़ायनी आंदोलन के खिलाफ जिहाद शुरू करने के लिए कहा। आगे चलकर उनकी विरासत को संरक्षित रखते हुए हमास आंदोलन की सैन्य शाखा का नाम उनके नाम पर रखा गया। उसके बाद से फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन ने ज़ायनीवाद को एक अन्य औपनिवेशिक योजना के रूप में देखना शुरू किया, जिसे पराजित करने की ज़रूरत थी। 1947 में जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का निर्णय लिया, तो फिलिस्तीनियों ने अन्य अरब देशों के साथ मिलकर ब्रिटेन के नियंत्रण वाले शासन के बजाय एक देश के गठन का प्रस्ताव रखा। आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक दूसरा ही समाधान पेश किया। फिलिस्तीनियों के लिए उसने ये संदेश दिया कि आप प्रवासी यहूदियों के साथ मिलकर इस सरजमीन पर नहीं रह सकते, आप अपने देश का केवल आधा हिस्सा ही बचा सकते हैं और बाकी आधा हिस्सा यहूदियों के लिए छोड़ दें। 1945 तक ज़ायोनी 5 लाख से ज़्यादा यहूदी अप्रवासियों को फिलिस्तीन की ओर आकर्षित करने में सफल हो चुके थे। हालांकि उस समय फिलिस्तीन की मूल जनसंख्या 20 लाख से अधिक थी। कुछ यहूदी अप्रवासी ब्रिटिश सरकार की अनुमति से वहां पहुंचे थे और कुछ बिना अनुमति के। वहां की मूल आबादी से परामर्श नहीं किया गया और न ही फिलिस्तीन को यहूदी राज्य में बदलने की योजना के कड़े विरोध पर विचार किया गया। फिलिस्तीन को अपना वतन बनाने वाले ज़ायोनियों ने सरकार के भीतर एक सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उस समय तक ज़ायोनी आंदोलन ने कानूनी रूप से फिलिस्तीन की 7% भूमि खरीद ली थी। ये 7% भूमि भविष्य में एक देश स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ज़ायोनी उपनिवेशवादी आंदोलन ने इसके समाधान के रूप में नरसंहार और फिलिस्तीनियों के अमानवीयकरण की नीति अपनाई। ज़ायोनियों ने भूमि पर अपना नियंत्रण 7% से अधिक बढ़ाने और बहुसंख्यक मूल आबादी को उनकी मातृभूमि से बाहर निकालने का फैसला किया। ज़ायोनीवाद एक औपनिवेशिक योजना है। ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अभी तक अपने लक्ष्य नहीं हासिल कर सका है और अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन का अभी भी जनसांख्यिकीय रूप से यहूदीकरण नहीं किया जा सका है। भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से फिलिस्तीन की अधिकांश भूमि पर ज़ायोनी सरकार का कब्जा हो, लेकिन फिर भी वो उसे उपनिवेश बनाने में व्यस्त है। अभी भी अल जलील, नकब और वेस्ट बैंक में यहूदियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से नई अवैध बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है। एलन पेपे के शोध के अनुसार ये कहानी भी पूर्णतः झूठी और अस्वीकृत है। पेपे ने शुरू से ही इसे वास्तविकता के बजाय एक अफसाने का नाम दिया है। हाँ, ज़ायोनीवाद एक उपनिवेशवादी आंदोलन है, एक ऐसा उपनिवेशवादी जिसने एक दूसरे देश को अपने लिए राष्ट्र के रूप में चुन लिया है और उसे हड़प लिया है।